आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हमारा जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं उनकी कविताओं को हमने आज के इस कार्यक्रम में शामिल किया है और उनकी दो कविताएं हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल हैं, वह तोड़ती पत्थर और मौन। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इन्हीं दो कविताओं के बारे में चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इन कविताओं को रचने के पीछे कवि की क्या दृष्टि थी, कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है और क्या संदेश हमें देना चाहता है। श्रोताओं, आप चाहे बड़े शहर में रह रहे हों या किसी छोटे गांव में या किसी कस्बे में, कहीं भी रह रहे हों, मेरा मानना है कि आपने कभी ना कभी आते जाते बाज़ार जाते या कहीं बाहर कहीं पर भी किसी काम के लिए जाते हुए कभी ना कभी मज़दूरों को भवन निर्माण के कार्य में जुटे हुए ज़रूर देखा होगा। मेरा विश्वास है कि आप सभी उस दृश्य को याद कर पा रहे हैं या वो याद आपके दिमाग में आ रही होगी जब आपने इस तरह से किसी भी मज़दूरनी को काम में जुटे हुए पाया होगा। कभी ना कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपने उसके साथ सहानुभूति रखी होगी, आपको लगा होगा कि आप बहुत ही बेहतर स्थिति में हैं और जो मज़दूर है, जो श्रमिक है, वो बहुत ही मौसम की मार झेलते हुए वो इस काम में लगा हुआ है क्योंकि उसके पास आजीविका अर्जित करने का कोई और तरीका नहीं है। तो मैं इसलिए ये बात आपसे साझा कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको जो आगे बताने जा रही हूँ वो इसी आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित है। अगर आप इस तरह के जो मजदूर वर्ग हैं उनके साथ आप समानुभूति एम्पैथी रखते हैं, आप उनकी कहना चाहिए कि उनकी परिस्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप होते तो आप किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हुए अपना जीवन यापन कर रहे होते, कितनी संघर्षपूर्ण आपकी स्थिति होती, तो आपके लिए ये कविता समझना और इस बारे में इस चर्चा को सार्थक बनाने में हमें काफ़ी सहायक होगा। तो आपने ज़रूर देखा होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। तो आपने कभी ऐसा जानने की कोशिश की कि वे किन परिस्थितियों में काम तो वे कर रहे हैं लेकिन क्या उन्होंने कभी अपनी इस परिस्थिति में उनमें कोई परिवर्तन हुआ? क्योंकि जो मजदूर हैं उनका जो जीवन यापन की जो शैली है वो बहुत अधिक बदल नहीं पाती है। वे तमाम जीवन वे ये श्रम का काम करते हुए, मजदूरी का काम करते हुए ही उनका पूरा जीवन बीत जाता है। हम इसलिए नहीं ये पहचान पाते, हम इस रूप में उन्हें नहीं देख पाते क्योंकि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि हमें उनके जीवन की कठिनाइयाँ थोड़े समय के लिए तो विचलित करती हैं लेकिन उससे आगे हम उनके बारे में सोच नहीं पाते। यहाँ पर जो हमारे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उन्होंने ऐसी ही एक मजदूरनी का एक चित्र खींचा है कविता के माध्यम से और हमें ये बताने की कोशिश की है कि अमूमन हर जगह ये श्रमिक जो हैं वो इसी परिस्थिति में अपने काम में लगे होते हैं। तो आइए ये कविता हम पढ़ते हैं और फिर हम इस पर बात करेंगे। तो इस कविता का जो शीर्षक है वो है वह तोड़ती पत्थर। अधिकांशतः आपने जैसे संज्ञा और सर्वनाम भी सीखे होंगे, नाउन्स और प्रोनाउन्स, तो आपने देखा होगा कि हम प्रोनाउन का, सर्वनाम का प्रयोग तभी करते हैं जब उससे पहले हमने संज्ञा का प्रयोग कर लिया है। जैसे किसी भी व्यक्ति का जैसे उदाहरण लें कि राम ने ये काम किया, राम ने पढ़ाई की या राम किताबें लेके आया, उसके बाद हम अगले वाक्य में लिखते हैं कि वह इस समय खाना खा रहा है, वह इस समय खेल खेल रहा है या कोई और कार्य कर रहा है, तो राम का प्रयोग होने के बाद वह सर्वनाम का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर जो अलग स्थिति है वो ये है कि यहाँ जो कविता का जो शीर्षक है वही सर्वनाम से आरंभ हुआ है। तो देखिए आगे इस पर भी हम बात करेंगे। तो हम अपनी कविता को आगे बढ़ाते हैं। ये कविता कुछ इस तरह से है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई ना छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका, अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तम तमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई रुई जो जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा। छिन्न तार देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी। सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघड़। ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। तो ये हमारी कविता है वह तोड़ती पत्थर, जिसके बारे में हमने ये चर्चा की आरंभ में। निराला जी छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं, और उनका जो ये कविता है उनकी अनामिका नामक काव्य संग्रह में से ली गई है। और इसमें जैसा कि आपने भी देखा और मतलब आपने भी सुना कि ये एक श्रमिक स्त्री पर लिखी हुई है, और जो दृश्य है वो ये है कि एक स्त्री और सड़क के किनारे बैठी हुई पत्थर तोड़ रही है। यद्यपि कवि ने लिखा है कि उन्होंने इसे इलाहाबाद के रास्ते पर पत्थर तोड़ते हुए देखा, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि इस तरह से पत्थर तोड़ती हुई, भवन निर्माण के काम में लगी हुई मजदूरनी या श्रमिक महिला आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो इस इलाहाबाद की किसी सड़क पर इस तरह से काम में लगी हुई किसी स्त्री को देखकर निराला ने लिखा है कि जहाँ वो बैठी हुई वह तोड़ती पत्थर, देखा उससे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। जहाँ वो पत्थर तोड़ रही है वहाँ कोई छायादार पेड़ नहीं है। जिस पेड़ के नीचे बैठकर, जिसकी छाया में थोड़ी देर थोड़ी ठंडक महसूस करके वो स्त्री अपना काम करे, वहाँ इस तरह का कोई भी छायादार पेड़ नहीं है जो उसे इस गर्मी की प्रचंडता से बचा सके। जैसा कि अभी आप महसूस कर सकते हैं, अभी वर्षा ऋतु आरंभ हुई है और थोड़ी बहुत बरसात की बूंदें हम सभी देख रहे हैं, लेकिन अमूमन उत्तर भारत जो है वो गर्मी की पूरी चपेट में है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह की भयंकर गर्मी में, जहाँ हमें भवन के अंदर भी बहुत अधिक गर्मी सताती है, वहाँ आप कल्पना कीजिए कि एक जलती हुई धूप में एक स्त्री बिना किसी छाया के अपने काम में लगी हुई है, पत्थर तोड़ रही है, क्योंकि उसकी नियति वही है। मेहनत कर रही है वो, और ऐसा नहीं है कि उसे अपनी इस स्थिति से कोई शिकायत है, उसे कोई शिकायत नहीं है, उसने अपनी नियति स्वीकार की है। इसलिए वो चुपचाप बिना कोई विरोध किए हुए अपनी स्थिति को स्वीकार कर रही है और चुपचाप अब पत्थर तोड़ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस वर्ग को इस बारे में बहुत अच्छे से भान है, बहुत अच्छे से एहसास है कि यदि उन्हें अपना अस्तित्व कायम रखना है तो उन्हें इतना कठिन परिश्रम करना ही होगा। क्योंकि अकुशल श्रमिक हैं और इनके पास कोई और कौशल नहीं है, तो उन्हें मजदूरी करके ही अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवारजनों का उन्हें गुजारा करना है और उन्हें मेहनत करनी है। तो ये एक दृश्य जो खींचा है वो एक मजदूर स्त्री का जो कड़ी धूप में पत्थर तोड़ रही है। अब यहाँ पर उसका कहना चाहिए कि जो उसका शारीरिक सौंदर्य है या जो मजदूरी का काम करते हुए भी जो उसका सौंदर्य है, वो जो एक कवि की नज़र से दृश्य खींचा है, वो उसके बारे में बात हो रही है कि श्याम तन है, सांवला उसका जो शरीर है वो सांवला है, भर बंधा यौवन, वो एक युवती है, नव यौवन है उसका, और अपना जो यौवन है वो उसका सब श्रम में, वो सही जगह अपना शक्ति, अपनी सशक्तता, अपना जो शारीरिक बल है उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए वो अपना काम बहुत तत्परता से कर रही है। नत नयन, उसके जो नयन हैं वो झुके हुए हैं, ये भी कहा जा सकता है कि वो अपने काम में लगी हुई है, तो इसलिए वो अपने काम पर ध्यान दे रही है। लेकिन कवि की दृष्टि से हम कल्पना कर सकते हैं कि शायद वो अपने प्रिय की भी याद में है, वो उसे याद भी कर रही है, और उसका जो मन है वो काम में लगा हुआ है। गुरु हथौड़ा हाथ, वो भारी हथौड़ा जो है उसने अपने हाथ में लिया हुआ है और वो बार बार प्रहार कर रही है, बार बार पत्थर पर चोट कर रही है और पत्थर तोड़ रही है। सामने तरु मालिका, अट्टालिका प्रकार, सामने जहाँ वो ये पत्थर तोड़ रही है वहां पर कोई पेड़ नहीं है जो उसे गर्मी की धूप से बचा सके, लेकिन उसके बिल्कुल सामने ही पेड़ों की पंक्तियां हैं, सौंदर्य वहां बहुत है, जिसे देखकर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी स्थिति में और सामने के जो दृश्य की स्थिति में बहुत अधिक अंतर है। सामने पेड़ों की पंक्तियां हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे भवन हैं, यानी बहुत ही समृद्ध इलाका है जहां पर बहुत बड़े बड़े भवन हैं, और उन भवनों में जो लोग हैं वो बहुत आराम से रह रहे हैं, शायद बिल्कुल उसकी स्थिति से बिल्कुल अनजान है। तो वो अपने ही धुन में अपनी नियति को स्वीकार करते हुए अपना काम बहुत ही तत्परता से, बहुत ही मेहनत से कर रही है। आगे कवि कहते हैं कि चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप उठी झुलसाती हुई लू। यद्यपि गर्मी के इन सभी लक्षणों से हम बहुत अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब गर्मी अपने प्रखर रूप में होती है तो किस तरह का माहौल होता है और किस तरह का किस कहना चाहिए कि गर्मी की जो प्रखरता है वो हमें कितना परेशान करती है, हमें कितना अपने काम से विचलित करती है। लेकिन यहाँ ये गर्मी जो है वो इस मजदूर स्त्री को विचलित नहीं कर पा रही है। तो धूप चढ़ रही है, जब धूप चढ़ती है, जब सूरज चढ़ता है तो धूप बढ़ रही है और गर्मी भी बढ़ रही है, ये बताया है। गर्मियों के दिन है तो निश्चय ही बहुत तेज धूप है और बहुत तमतमाता हुआ रूप है, बहुत ही प्रखर है दिन। उठी झुलसाती हुई लू, और ऐसे में लू भी चल रही है, जब गर्म लू चलती है तो बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी होती हैं। आपने सुना होगा समाचारों में कि इतने लोगों को लू से दिक्कत हुई है, या उनको कोई खांसी, उनकी समस्या हो गई, उनको लू लग गई है। तो लेकिन ये जो स्त्री है ये इन सब दिक्कतों से दूर अपने काम में लगी हुई है। जैसा ये जो लू जैसी परिस्थिति जो है गर्मी की, ये सभी के लिए है, लेकिन अंतर ये है कि जो धनाढ्य हैं, जो समृद्ध हैं, उनको ये मौसम विचलित नहीं कर पाता है, क्योंकि उनके पास सभी सुख सुविधाएं हैं, उनके पास इस गर्मी से निपटने के लिए पंखे हैं, कूलर हैं, एसी हैं, उनके जो भवन हैं वो इस तरह से बने होते हैं कि उनमें ठंडक रहने का पर्याप्त तो बंदोबस्त होता है। लेकिन अगर हम निम्न वर्ग को, जो आर्थिक दृष्टि से निम्न वर्ग है, जिसे आजीविका अर्जित करने के लिए सड़क पर जाना ही होगा, मजदूरी करनी ही होगी, उनके लिए इस तरह की कोई भी स्थिति उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये उनकी सीमा से बाहर की बात है। तो जो ये सामने इतनी सुख सुविधा दिख रही है, इतने पेड़ दिख रहे हैं, इतने ऊंचे भवन दिख रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि इस स्त्री की आर्थिक स्थिति में और सामने जो इतने भवन हैं उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक फर्क है, बहुत अधिक अंतर है। इसके पास इतनी, मैं कहना चाहिए कि न्यूनतम सुविधा भी नहीं है कि यह इस गर्मी के, जो प्रकृति का जो प्रचंड रूप है गर्मी का, उससे ये बच सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस कविता का जो पहला अंश है उसमें उन्होंने, कवि ने बताया है कि स्त्री है, और यहाँ पर आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर सिर्फ एक स्त्री, एक मजदूर की बात नहीं है, ये कहीं, ये मजदूर कहीं भी हो सकते हैं, जो इस तरह से मौसम की विपरीत परिस्थितियों में भी अपना काम जारी रखते हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ एक स्त्री की बात नहीं है, एक मजदूर की बात नहीं है, ये संपूर्ण मजदूर वर्ग की बात है, जो बिना किसी पेड़ के, बिना किसी कहना चाहिए आश्रय के, अपने काम में लगे रहते हैं। उनकी लगन किसी भी धनाढ्य की लगन से किसी भी तरह से कम नहीं है, बल्कि वे मौसम की मार भी झेलते हैं और अपने काम में लगे हैं। तो इसके साथ ही हमने जैसे शुरू में भी बात की कि यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी कविता जो आरंभ हुई है, ये वह से शुरू हुई है, वह तोड़ती पत्थर। तो इसलिए जैसा मैंने बताया कि ये किसी भी एक श्रमिक के ऊपर आधारित नहीं है, ये संपूर्ण श्रमिक वर्ग पर लागू हो रही है ये बात। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारी मजदूर स्त्री है, उसने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया है। देखिए, या तो हम परिस्थितियों को बदलने के लिए संघर्ष करें, या हम परिस्थिति, अगर हम परिस्थितियां नहीं बदल सकते हैं, तो हम खुद को उन परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं, तभी एक सही एडजस्टमेंट कायम हो सकता है। तो इस स्त्री ने अपनी इस नियति को स्वीकार करके इसने अपने आप को उन परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया है। एक युवा महिला है, अन्य स्त्रियों की तरह, अन्य युवा लोगों की तरह, इसका भी मन होता होगा कि मनोरंजन के इसके पास साधन हो, या यह भी जीवन की सुख सुविधा ले सके, लेकिन इसके पास वो विकल्प उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसने उस सब बात को दरकिनार करते हुए अपनी नियति को भली भांति स्वीकार कर लिया है और ये अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रही है। अब आगे जब हम बात करें, तो इस कविता में आगे उन्होंने और गर्मी का प्रचंड रूप बताया है कि रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई। तो गर्मी इतनी अधिक हो गई है कि कह सकते हैं कि जिस तरह से रुई जो है एकदम से जलती है, इतनी ज्यादा गर्मी सड़क पर हो गई है। उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि इतनी प्रचंड गर्मी वहां पर है और इतना अधिक रुई में, जैसे आग की, अगर एकदम आग लग जाए तो एकदम जल्दी से वो जल जाती है, तो उस तरह से गर्मी की अधिकता हो गई है। और दोपहर इतनी गर्म है जैसे धूल का एक एक कण, गर्द धूल की का एक एक कण जो है वो आग की चिंगारी के जैसा प्रतीत होता है। यानी बहुत अधिक गर्मी हो गई है, गर्मी की प्रचंडता अत्यधिक आ गई है। तो ऐसे में प्राय हुई दोपहर वह तोड़ दी पत्थर। मौसम बदल रहा है, अभी दिन चढ़ रहा था, धूप आ रही थी और उसके बाद लू भी चल रही है, लेकिन वो उससे कहीं नहीं रुकी है, वह तोड़ रही है पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा। जब यह मजदूर स्त्री ने देखा कि कोई उसे देख रहा है, तो एकदम से जैसे एक स्वाभाविक सा रिफ्लेक्स होता है कि हमें पता चल जाता है कि हाँ कोई हमें देख रहा है, तो उसे भी इस बात का आभास हुआ और उसने देखा कि हाँ मुझे कोई देख रहा है। तो उसने एकदम से जैसे वो सजग हुई तो उसने सामने देखा, उस भवन की ओर देखा। कहाँ देखा? उस भवन की ओर देखा जो पूरी सुख सुविधाओं से लैस है, जिसमें सभी तरह की सुख सुविधाएं हैं। और देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। यानी उसने देखा कि हाँ बहुत ही अंतर है, बहुत अधिक अंतर है उसमें, लेकिन उसे इस बात का कोई भी कहना चाहिए कि वह विचलित नहीं हुई, उसे इस बात का कोई भी मलाल नहीं है, कोई भी दुख नहीं है। उसके मन में कोई कहना चाहिए सेल्फ सिंपथी, जैसे कि विचारगी वाले उसमें मूड में वो नहीं थी, किसी तरह की ईर्ष्या उसके मन में नहीं उपजी थी। उसने इस तरह से कवि को देखा जैसे उसने सब तरह के दुख झेले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह रोई नहीं, उसने प्रतिकार नहीं किया, उसने अपनी कमजोरी नहीं जताई। हम रोते कब हैं? जब हम लाचार हो जाते हैं और स्थितियां हमारे हाथ में नहीं रहती है, हमारे नियंत्रण से बाहर चली जाती हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ जो यह मजदूर स्त्री है, इसने अपनी स्थिति स्वीकार कर ली है, इसलिए यह उस सेल्फ पिटी मोड में नहीं है, विचारगी वाले मोड में नहीं है। तो इसने सब तरह का दुख झेला है, लेकिन अपने दुख पर वह रो नहीं रही है। कवि को ऐसा एहसास हो रहा है कि जो इस स्त्री में जो स्वाभिमान नजर आ रहा है, उसको जो अपनी मेहनत पर जो विश्वास नजर आ रहा है, ऐसा विश्वास देखने मतलब बहुत ही कम देखने को मिलता है। उन्हें इस बात मतलब वे इस बात के कायल भी हो रहे हैं कि ऐसा यद्यपि नहीं मिलता कि हम धनाढ्य लोगों से, अगर हम मजदूर हैं तो हम धनाढ्य लोगों से, समृद्ध लोगों से ईर्ष्या ना करें, एक स्वाभाविक सी बात है जो हमारे पास नहीं है। अगर किसी और के पास हो, एक मानव प्रवृत्ति है कि हमें ईर्ष्या का अनुभव, हम ईर्ष्या महसूस करते हैं, लेकिन इस स्त्री ने इस तरह की कोई भी ईर्ष्या, किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं जताई। और इस मामले में ये बहुत ही स्वाभिमानी स्त्री जान पड़ती है। थोड़ी देर जैसे इसने कवि को देखा, उधर अट्टालिका को देखा, भवन को देखा, तो थोड़ी देर इसकी गति रुकी और उसका जो हाथ था वो रुक गया, क्योंकि जो हथौड़े से वो तोड़ रही थी, उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें टपक रही थी उसके माथे से, लेकिन उसने इस बात की परवाह ना करते वो फिर से काम में लग गई। और जब वे काम में लगी है तो उसने अपना काम इस तरह से शुरू किया, ऐसा ये कवि की कल्पना है कि मानो वह कह रही है, चुप रहकर भी वो कह रही है कि हाँ यहाँ मैं तोड़ती पत्थर, यानी मैं यहाँ पत्थर तोड़ रही हूँ, और पत्थर जैसे जो बिल्कुल हृदयहीन, जिनमें कोई हृदय किसी प्रकार की संवेदना नहीं बची है, हम मैं ऐसी व्यवस्था को भी तोड़ देना चाहते हैं। तो इस तरह से ये हमारी जो कविता थी, ये वह तोड़ती पत्थर, आप देखेंगे कि इसमें बहुत अधिक कहना चाहिए कि इसको समझने में बहुत अधिक दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आपके पास एक संवेदनशील दृष्टि होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप इस कविता को समझ सकें। अगर आप में समानुभूति है, मजदूर वर्ग के प्रति एम्पैथी है, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे कि एक मजदूर मजदूरी करते हुए भी किस तरह से एक स्वाभिमान की दृष्टि से वो अन्य लोगों को देख सकता है, कैसा हो सकता है कि उसे ईर्ष्या ना हो अपने से बेहतर लोगों के प्रति। निराला जी की एक अन्य कविता भी हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल है, जिसका शीर्षक है मौन। बहुत ही छोटी सी कविता है, और ये कविता जब मैं आपको इसका वाचन में करूँगी तो आप खुद समझेंगे कि बहुत ही छोटी सी कविता है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो बहुत ही गंभीर है। और यही हमारे यहाँ इसी भाव का अभाव है। तो आप खुद जानने की कोशिश कीजिएगा, ये पहेली भी है कि किस भाव का अभाव है हमारे जीवन में। ये कविता कहाँ किस बात को बता रही है। ये कविता कुछ इस तरह से है कि बैठ लें कुछ देर, आओ एक पथ के पथिक से प्रिय, अंत और अनंत के तम गहन जीवन घेर, मौन मधु हो जाए, भाषा मूकता की आड़ में, मन सरलता की बाढ़ में, जल बिंदु सा बह जाए, सरल अति स्वच्छंद जीवन, प्रात के लघुपात से, उत्थान पतना घात से, रह जाए चुप निर्द्वंद। तो क्या आपने अंदाज लगाने की ये कोशिश की, अनुमान लगाने की कोशिश की कि हम इसमें किस बात की बात कर रहे हैं, क्या विषय होगा। यद्यपि इसका जो शीर्षक है इस कविता का है मौन। ये जो कविता है ये निराला जी की ग्रंथावली है, उसके भाग दो से ली गई है। और इस कविता में कवि अपने प्रिय के साथ कुछ क्षण शांति से मौन रहकर व्यतीत करने का आग्रह कर रहा है। जब हम किसी भी बात में कहते हैं कि आओ, तो हम एक आग्रह के साथ चलते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पर व्यक्त करना चाहती हूँ वो यही कि शांति कहाँ है ही नहीं शांति। हम खुद भी अशांत रहते हैं, कितने सारे तनाव हम पाले रहते हैं। और बहुत बार ऐसा है कि हम बहुत सारी बातें करते हैं और उसका अर्थ कुछ भी नहीं निकलता है। हम स्ट्रेस में रहते हैं, हम तनाव में रहते हैं। तो उस सब तनाव से दूर कवि ये कल्पना भी कर रहा है और आग्रह कर रहा है प्रियतम से, अपने अपने प्रिय से। ये प्रिय मित्र भी हो सकता है, ये प्रिय जीवन साथी भी हो सकता है, कि हम कुछ क्षण तो हम शांति से, एक शांति है जिसमें हम यही कयास लगाते हैं कि अगला व्यक्ति क्या सोच रहा है, या अभी अगला व्यक्ति जो प्रश्न पूछेगा उसका हमें क्या जवाब देना है, क्योंकि हम दूसरे के की संवेदनाओं का सम्मान भी नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हम भटक गए, कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हम ही ठीक हैं। लेकिन यहाँ जब साथ की बात है, स्नेह की बात है, तब आग्रह की बात है। और जहाँ आग्रह है वहाँ पर वो जो मौन है, जिस मौन में कुछ क्षण व्यतीत करने का आग्रह कवि कर रहा है, उस मौन में एक शांति है, एक सुकून है, एक साहचर्य है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमारी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है तो हम चुप भी हैं तो भी हमें इस बात की चिंता नहीं है कि अगला क्या सोच रहा है। आप भी कोशिश कीजिए कभी ना कभी, याद मतलब आप भी याद करने की कोशिश कीजिए, कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि एक बहुत ही आपसी समझ वाली जो शांति है, जो मौन है, वो आपको एक व्यक्ति के रूप में भी बहुत ही कहना चाहिए सुकून प्रदान करता है। तो उसी तरह का सुकून खोज रहा है हमारा कवि और कह रहा है कि बैठ लें कुछ देर, आओ। तो इस कविता में जब प्रिय जहाँ पे संबोधित कर रहा है प्रिय कहकर, वहाँ पर मैंने जैसे बताया कि एक ही राह के राही हैं, एक ही राह पर चल रहे हैं, सहयात्री भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं और जीवन साथी भी हो सकते हैं। मुख्य बात यह है कि जो परिस्थितियाँ हैं वो एक ही जैसी हैं, समान हैं। तो इस कविता में कवि कह रहा है कि प्रिय आओ, दोनों कुछ देर के लिए हम बैठ लेते हैं। जीवन तो चलता रहेगा, यही तो बात है कि जीवन चलता रहता है, हम भी लगातार चलते रहते हैं। कभी क्या हम कुछ क्षण ऐसे निकालते हैं कि हम बैठकर सोच लें, विचार कर लें या आराम कर लें, इस बात को महसूस कर लें कि वो शांति हमसे खो गई है, वो मन की शांति हमने खो दी है। तो जीवन तो निरंतर गतिशील है और उस गतिशीलता में हम कुछ पल बैठकर खुद को विराम दें, यानी हम बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल रुक जाएं। एक यात्रा है, उसमें हम कुछ देर क्षण रुककर हम रुक जाएं और हम इस बात पर सुकून महसूस करें एक दूसरे के साहचर्य में, एक दूसरे के साथ बैठकर। हम दोनों जब एक ही जीवन के इस रास्ते के हम यात्री हैं, तो कुछ जो हमारे कष्ट हैं, कुछ हमारे डर हैं, कुछ स्थाई हैं, कुछ अस्थाई हैं। हर रोज़ एक ना एक चुनौती हमारे सामने आती रहती है। कुछ ना कुछ दर्द मेरा भी है, कुछ ना कुछ दर्द तुम्हारा भी है, कोई ना कोई दर्द। तो इस सब को समेट कर हम थोड़ी देर चैन से हम बैठ लें। जैसे कवि ने कहा है कि तम गहन जीवन घेर, तो यहाँ पर बैठने की जो चाह में जीवन यात्रा को याद करना चाहता है कवि। कवि चाहता है कि हम दोनों, वे दोनों चुपचाप बैठें, क्योंकि वही तो बात है कि हम संघर्ष की स्थिति में रहते हैं। चुपचाप बैठना, रूठ कर बैठना नहीं, आपसी समझ विकसित होने के बाद शांति से, मौन से बैठना। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि जीवन का जो गहन अंधेरा है, अगर हम असफल हो रहे हैं, हमारे पास कुछ निराशाएं हैं, हम उन सब को समेट कर चुपचाप उस पर हम विचार करें। जहाँ भाषा है, हम हमेशा अपनी अभिव्यक्ति करते हुए, अपने विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करते हुए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ कवि कहता है कि भाषा मुक्तता की आड़ में, मन सरलता की बाड़ में, जल बिंदु सा बह जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जहाँ हर बात को कहकर समझाते हैं, लेकिन क्या सभी बातें कहकर समझाई जा सकती हैं? ऐसा नहीं है। अगर हम में आपसी समझ है, तो बहुत बार बिना कहे भी हम वार्तालाप करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शायद इसी को कहते हैं, कि हम अपने हाव भाव से भी हम बहुत सारे विचार अभिव्यक्त कर लेते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा भी गया है कि चुप रहकर भी सब कुछ समझा जा सकता है। भाषा हर भाव को व्यक्त नहीं कर पाती है। तो मौन मधु सा मीठा कब हो सकता है? जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर आपसी समझ नहीं है, हम एक दूसरे को त्रस्त करने के लिए, प्रतियोगिता करने के लिए, किसी को हर्ट करने के लिए अगर हम चुप हैं, तो वे जो चुप्पी है, जो वो मौन है, वो मधु सी मीठी कैसे है? नहीं है। उसमें तो आप तनावग्रस्त हैं। आप इसी अंदाज़ा यह लगाने में रह जाते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है, कैसे उसके भावों पर नियंत्रण हम कैसे करें, हम कैसे उसे काबू में करें। तो जब हम एक दूसरे का भाव समझते हैं, तब वो जो मौन है, वो भी बहुत मिठास देता है, बहुत ही शांति देता है, बहुत ही संतोष देता है। तो इसलिए ऐसा कहा गया है। और मन को जो उपमा दी गई है, वो दी गई है कि जैसे बूंदें नदी में चुपचाप बह जाती हैं, वैसे ही हमारा मन, जीवन का जो ये विशाल बहाव है, उसमें बूंदों सा चुपचाप बह जाए और हमारा जीवन जो है वो बंधनों से मुक्त हो, हमारे वश में हो, हमारे नियंत्रण में हो, और हम जीवन के सभी उतार चढ़ाव बहुत ही कहना चाहिए कि तनाव मुक्त रहकर हम उन सबको, उन चुनौतियों का सामना हम कर सकें, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह सुबह की जो हवा है, उससे छोटे छोटे जो पत्ते हैं वो हिलते रहते हैं और झोंकों को सहन करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी, जिस तरह से पेड़ के पत्ते हिलते हैं झोंकों से, उसी तरह से हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी असफलताएं आती रहती हैं, निराशाएं आती रहती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो चाहें वही मतलब कहना चाहिए कि परिणाम भी निकले। बहुत बार हमें दुख भी होता है, निराशा भी होती है, लेकिन हम फिर भी उस विशाल प्रवाह में हम उसी तरह से एक बूंदों की तरह हम बह जाएं। यानी हम बहुत अधिक संघर्ष वाली स्थिति में, न रहें, निर्द्वंद्व हो जाएं हम। कहने का तात्पर्य क्या, निर्द्वंद्व वही व्यक्ति हो सकता है जिसके पास जब सुख आए तो वो बहुत अधिक खुश न हो और जब दुख आए तो वह बहुत अधिक घबराए ना। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो दोनों परिस्थितियों में बहुत सकारात्मक या बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस में भी वो बहुत इतना ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि समय बदलता रहता है। सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। तो दोनों स्थितियों में किसी भी तरह का अंतर ना रहे तो वह व्यक्ति निर्द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व से ऊपर उठ जाएगा। तो कवि ऐसे ही निर्द्वंद्व जीवन की कामना कर रहा है। बहुत बड़ी चुनौती है ये व्यक्ति के लिए आज के समाज में निर्द्वंद्व होकर जीवन जीने की, लेकिन कवि है, कल्पना तो वो कर ही सकता है। तो ये बहुत ही छोटी सी कविता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश ये कविता दे रही है कि जीवन की इस आपाधापी में हम कुछ देर विराम लेकर मनन करें अपनी असफलताओं के बारे में, अपने जीवन के बारे में, और बहुत अधिक संघर्ष की स्थिति में ना रहें, बहुत अधिक इस तरह से ना जूझें कि हम तनावग्रस्त रहें, तो हम जीवन का आनंद लें। तो ये हमारी दो कविताएं थी। मुझे उम्मीद है कि आपको भली भांति समझ में आई होंगी, आपने इनका आनंद भी लिया होगा, और अधिक विस्तार के लिए आप हमारा पाठ्यक्रम भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।